हाँ जी
बाबा, बाप दादा की भी आपस में कभी रूढ़ चलती है। कैसे समझना
बाप और दादा, बाप कौन और दादा कौन, नहीं मालूम है? बताओ।
बाप तो राम बाप ऐसा शुरू में इसे समझाएंगे
हैं?
बाप तो राम बाप
और
दादा ब्रह्मा।
तो जो राम बाप है वो अकेला राम बाप है या निराकार राम और साकार राम दोनों इकट्ठे एक ही हैं? निराकार बाप साकार बाप के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। चलो रूढ़यान ही करनी है तो रूढ़यान करना भी कोई काम है या नहीं है? हैं, ये भी तो कोई काम है। तो ये रूढ़यान बाप और दादा आपस में करते हैं। राम बाप की रूह एक बात और दादा की एक ही बात या दूसरी बात? अरे बात एक ही रहती है या अलग अलग रहती है? बाप दादा की, दादा कभी बाप की वाणी में इंटरफियर करते हैं या नहीं करते हैं?
करते हैं।
तो रूढ़यान में भी दो बातें होती हैं, क्योंकि दोनों की आत्माएं अलग अलग हैं। दादा की आत्मा सतयुग में जन्म लेगी, वो संगम युग की बातों को जानती ही नहीं, और बाप सतयुग में जो जन्म लेंगे उन सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चों के बापों का भी बाप है, उनको जानने वाला है या नहीं है? हैं? हाँ, ऊंची डायनेस्टी का है तो बातों में फर्क हो जाता है, इसलिए दोनों की रूढ़यान चलती है। बाप दादा को अपनी बात समझाने का पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? है? कोई भी दुनिया में बाप होता है अपने ना समझ बच्चों को समझाने का प्रयास करता है या नहीं करता है? है? करता है। ऐसे ही बाप दादा भी आपस में रूढ़यान करते हैं। और
बाबा कब करते हैं?
है?
कब करते हैं?
ये तब तक है जब तक वो कृष्ण बच्चा पूरी बात नहीं समझता है, बाप को पूरा नहीं पहचानता है। अभी तो वो खुद को ही क्या कहता है, है?
गीता का भगवान।
वो कहता है मैं ही गीता का गीता पति भगवान हूँ। गीता माता तो है, सारे विश्व की माता है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं विश्वपति हूँ।
अरे
तुम तो शरीर भी छोड़ गए, अब विश्वपति कहाँ से बन जाओगे? शरीर तो धारण तुम्हें करना नहीं है। तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। और
हाँ, पिछले जन्म लेने के 150 इयर्स के बाद एक्यूरेट सतयुग शुरू होता है। पिछले जन्म लेने के,
किसके जन्म लेने के? कृष्ण के जन्म लेने। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण।
समझाना के बाबा।
अरे गुरु से पक्का पूछ लो पहले। हाँ, गुरु जी से पक्का पूछ लो, समझ लो, फिर प्रश्न करो। हाँ,
पिछले जन्म लेने के 150 इयर्स के बाद एक्यूरेट सतयुग शुरू होगा।
अच्छा, उससे पहले नहीं होगा? एक्यूरेट सतयुग है, संगम में नहीं होगा, इनएक्यूरेट होगा।
कहाँ से कहाँ तक वो कैसे गिनना है, कब से कब तक गिनना है?
एक्यूरेट का मतलब क्या है? इनएक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट सतयुग है और इन एक्यूरेट सतयुग, एक्यूरेट विश्व इन एक्यूरेट विश्व, एक्यूरेट विश्व धर्म और इन एक्यूरेट विश्व धर्म, कब कहें? ये एक्यूरेट शब्द किस बात की तरफ इशारा करता है? ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि 900,000 जनसंख्या एक्यूरेट सतयुग में होगी, 900,000 जो बच्चा पैदा होगा वो सतयुग के 16 कला संपूर्ण जन्म को संपन्न कर देगा या नहीं कर देगा? कर देगा। तो जनसंख्या के आधार पर बाबा ने बताया एक्यूरेट सतयुग कब होगा? जब कृष्ण के जन्म के बाद 150 वर्ष की आयु पूरी होगी तो 900,000 जो आत्मा है परमधाम में से वो नीचे उतर आएगी। राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चे सतयुग में नीचे आ जावेंगे, राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप जैसे बच्चे हैं वो तो संगम युग में ही नीचे उतर चुके होंगे। तो बताया 16 कला संपूर्ण सतयुग की पूरी स्थापना तब कहेंगे जब सतयुग की पूरी आबादी कितनी हो जाएगी? 916,108। और
सर बाबा कौन से कृष्ण के 150 जन्म के बाद 150 साल के बाद
बता तो रहे हैं साकार श्री कृष्ण की बात। अभी पूछा ना कौन सा कृष्ण, सतयुगी कृष्ण या संगमयुगी कृष्ण? तो बताया साकार कृष्ण की बात है कि वो जन्म लेगा उसके 150 वर्ष के बाद जो है सतयुग होगा वो एक्यूरेट सतयुग होगा बाद में 150 वर्ष के बाद कि अधूरा स्वर्ग होगा? हैं? एक्यूरेट होगा 150 वर्ष के बाद। हाँ फिर अधूरा स्वर्ग रह जाए, वहाँ 16 कलाएं नहीं रहेंगी। जो भी पहली आत्मा 150 वर्ष के बाद उतरेगी वो 16 कला वाली नहीं होगी, कम कलाओं वाली होगी, इसलिए एक्यूरेट सतयुग नहीं कहेंगे। और एक मिनट
बाबा, से जो राजा गए हैं वो किला है जो मंदिर है मंदिर बनाते हैं उनके हाथ काट डाले।
द्वापर युग में ऐसा दुष्ट कर्म नहीं होता है, द्वापर युग में ऐसे तमो प्रधान नहीं होते हैं राजाएं। हाँ कलयुग में ऐसे राजाएं हुए हैं दुष्ट प्रकृति के कि जिन्होंने जो भी मॉन्यूमेंट बनाए हैं जैसे ताजमहल, तो ताजमहल बनवाने वाले को ये ईर्ष्या आ गई कि मेरा प्यार पक्का गिना जाए दुनिया में, ऐसा कहीं ना हो जाए कि मैंने जो ताजमहल इतना श्रेष्ठ बिल्डिंग बनवाई है ऐसी श्रेष्ठ अच्छी बिल्डिंग कोई दूसरा कारीगर तैयार कर दे।
नामलों के परिवार में ऐसे शूटिंग कैसे हुई?
यहाँ भी ऐसे हैं, वो सच्चा प्यार करने वाले हैं, उनका रूहानियत का प्यार है या जिस्मानियत का प्यार है? रूहानियत का है। ताज बीवी से जिस शाहजहां ने प्यार किया था वो रूहानी प्यार था या जिस्मानी प्यार था? रूहानी था, जिस्मानी प्यार था। और
बुद्ध क्राइस्ट के धर्म पिताए
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हाँ
देवता में आता है नया,
कितने देवताओं में? 33 करोड़ देवताओं में
नहीं आएगा।
जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नाम पड़ता है वो देहधारी आत्माओं का नाम पड़ता है या ऊपर से आने वाली आत्माओं का नाम पड़ता है? हाँ, जो ऊपर से आत्माएं उतरती है, जिस शरीर में उतरती है, उनका नाम पहले कुछ दूसरा था शरीर का नाम। जैसे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट ने जिसमें प्रवेश किया उसका नाम जीसस था, प्रवेश होने के बाद उसका नाम क्राइस्ट पड़ा। तो क्राइस्ट की आत्मा तो सतयुग में नहीं आती। ऐसे ही बुद्ध, महात्मा बुद्ध जब परम धाम से आत्मा आती है तो किसी शरीर में प्रवेश करती है, जिस शरीर में प्रवेश करती है उसका नाम पहले बुद्ध नहीं था, क्या था? सिद्धार्थ था। जब ऊपर वाली आत्मा ने प्रवेश किया तो उसका नाम बदल गया। तो जो ऊपर वाली आत्मा का नाम हुआ बुद्ध है, क्योंकि उस आत्मा ने उस शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जिस आत्मा ने कब्जा किया उसी का शरीर हुआ ना, इसलिए वो आत्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वो सतयुग में आती है। हाँ, वो धर्म पिताओं ने जिसमें प्रवेश किया, जिनका नाम पहले कुछ दूसरा था, वो आत्माएं सतयुग में जरूर आती है। पक्के सतयुग में नहीं आती, एक्यूरेट सतयुग में नहीं आती। कैसे सतयुग में आती है? कम कला वाले सतयुग में आती है या 16 कला संपूर्ण में आती है? कम कला वाले सतयुग में आती है। और
है?
है? बताया ना, देवता जो है उन्हीं को कहा जाता है जो दिव्य होते हैं, दिव्य कर्म करते हैं। तो दिव्य कर्म करने वाले कम होंगे या जास्ती होंगे? थोड़े होते हैं। वो तो राजयोगी होंगे या प्रजावर्ग में आने वाले होंगे? है, राजयोगी होंगे। प्रजावर्ग में आने वाले जो देवताएं हैं वो टोटल मिलकर के 33 करोड़ है। वो 33 करोड़ प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, ढेर की ढेर। तो 33 करोड़ की तो बात ही नहीं। और
बाबा, योगिनी माँ चंद्रवंशी का पूर्वज है, चंद्रवंशी का पूर्वज है योगिनी माँ।
हाँ,
तो वो सूर्यवंशी माँ कैसी?
सूर्यवंशी माँ कैसे हुई?
सूर्यवंशियों की माता कैसी?
सही बात है। देखो, जब शादियां होती हैं तो शादी कन्या की, कन्या कुल में जब शादी होती है वर की, तो वर ऊंच कुल का होता है या कन्या ऊंच कुल की होती है? वर ऊंच कुल का होता है। अब नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? आया ना? कैसे आया? हाँ, जो सूर्य है वो सूर्यवंशी है। सूर्य है वो अत्रि है। त्रि माने तीन। कौन है मुख्य तीन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी मुरली में क्या आया? न मैं ब्रह्मा हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ। पहला ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता है पहला ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण भी नहीं है, कौन? अनुसुईया का पति, काशी माता का, योगिनी माता का जो पति है, वो तीन देवताओं में से भी नहीं है। वो अत्रि है, यानी तीन देवता भी नहीं है। देवताएं ऊंची कोटि के या उन तीन देवताओं को बनाने वाला ऊंची कोटि का? तो बनाने वाला जो बाप है, उस बाप को कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। वो अत्रि है, तो वो अत्रि है सूर्य। और उनकी संगिनी है जिसे योगिनी कहा जाता है वो है चंद्रवंश से। हाँ। और ठीक है भयो है सुना सभी ने सुना। हाँ क्या कहते
शंकर जी शेर का
शेर
का अरे हाँ और तुम बताओ। हाँ
है शंकर जी शेर का।
अरे हिंदी नहीं बोलना आता है तो क्यों बोल रहे। हाँ बोलो
शेर का चमड़ा क्यों पहनते
शंकर है
शेर का चमड़ा क्यों पहनते
शेर का नहीं पहनते हैं बाघ अंबर। बाघ अंबर माने कपड़ा बाघ माने टाइगर। दो तरह के शेर होते हैं जानवर जो हैं उन जानवरों में दो जानवर सारे जंगल को कंट्रोल करने वाले होते हैं। एक होता है शेर और एक होता है टाइगर। टाइगर ज्यादा ताकतवर होता है या शेर ज्यादा ताकतवर होता है? हैं? शेर ज्यादा ताकतवर होता है बड़े मोहड़े वाला सिंह कहा जाता है लॉयन। और जो टाइगर है वो छोटे मोहड़े का होता है। लेकिन बुद्धि ज्यादा तीखी किस में होती है? है टाइगर में ज्यादा तीखी बुद्धि होती है इसलिए वो मौका देख करके हमला करता है। जहां देख रहा है अवसर ठीक नहीं है स्थितियां परिस्थितियां अच्छी नहीं है तो वो हमला नहीं करेगा। और जहां देखा पक्का मौका है अभी हमला करना जरूरी है अभी हमला करेंगे तो जीत जरूर होगी और हमला कर देता है। ऐसा टाइगर जो है वो विजयी होता है जो बुद्धि से काम लेता है या जो शरीर की शक्ति वाला ज्यादा शक्तिशाली शेर है वो विजयी होता है। है बुद्धि से काम लेने वाला टाइगर विजयी होता है। तो जो टाइगर है वो उसकी खाल दिखाई गई है पे ओढ़े हुए अर्थात वो बबर शेर जैसा पार्ट बजाने वाला बुद्धू नहीं है। कैसा पार्ट बजाने वाला है? हैं? टाइगर जैसा पार्ट बजाने वाला है। पार्ट तो उसका चलता है संगम युग में ही लेकिन जो पार्ट चलता है जब से पार्ट शुरू होता है तब से ही वो उछल कूद प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाता है या बाद में प्रत्यक्ष होता है? है बाद में प्रत्यक्ष होता है। जो संसार रूपी जंगल में और जानवर हैं जानवरियत को बढ़ाने वाले उन जानवरियतियों के कर्मों को तरजीह नहीं देता उन जानवरों को दबोच लेता है। वो बाद में दबोचता है या पहले ही दबोचना शुरू कर देता है? है अरे शंकर का पार्ट कब से है? कौन से संघ से शंकर का पार्ट प्रत्यक्ष होता है? 76 से। तो 76 में ही प्रत्यक्ष हो जाता है या बाद में प्रत्यक्ष होता है? हैं? बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो जब प्रत्यक्ष होता है तब पूरा मौका देख लेता है कि अब मैदान में आने का टाइम है। तब तक गुप्त होकर के पार्ट बजाता है इसलिए वो टाइगर की खाल शंकर को दिखाई गई है। वो कैसा पार्टधारी है? टाइगर जैसा पार्टधारी है या ब्रह्मा की तरह पार्टधारी है? है टाइगर की तरह पार्टधारी है। और అచ్చా అచ్చా నువ్వు హిందీలో చెప్పు. जो हिंदी समझने वाले हैं उनसे समझना, क्योंकि आप बाप के ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप की बात को पूरा समझते हैं, समझते हैं नहीं समझते? तो आप जब बड़े बच्चे हो जाएंगे ना तो बाप से डायरेक्ट समझेंगे। अभी जो लुलू लुलू को समझने वाले हैं उनसे समझ लीजिएगा। और हाँ है डमरू त्रिशूल दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं? जो शंकर है उसके हाथ में जो बाजा है वो बाजा एक तरफ से बजता है या दोनों तरफ बजता है? लेफ्ट में भी बजता है और राइट में भी बजता है। लेफ्ट में लेफ्टिस्ट के लिए बजता है और राइट में राइटियस के लिए बजता है। राइटियस हैं देवताएं और लेफ्टिस्ट हैं असुर राक्षस। दोनों ही बाप के बच्चे हैं या सिर्फ देवताएं ही बाप के बच्चे हैं? दुनिया में तो दोनों ही हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो बुरे बच्चे बाप बाप के होते हैं उनको रोटी दाल खाने का हक है कि नहीं? माँ बाप से बात करने का हक है या नहीं? माँ बाप की बात सुनने का हक है या नहीं? माँ की लोरी सुनने का हक है या नहीं? है। तो विष्णु का बाजा ऐसा नहीं है, कृष्ण का बाजा ऐसा नहीं है जो असुरों को भी सुनने योग्य हो और राक्षसों को भी सुनने योग्य हो। लेकिन शंकर का बाजा ऐसा है जो असुरों को लेफ्टिस्ट को भी सुनाता है और राइटियस को भी सुनाता है। वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है, इसलिए उसके हाथ में डमरू है, दोनों तरफ बजाता है। असुरों को भी खुश रखना है और देवताओं को भी खुश रखना है, या असुरों को खत्म कर देना है हमेशा के लिए? है हमेशा के लिए खत्म नहीं करना है। यहां तक के संगम युग में भी आसुरी लक्षण वाले 108 की माला में आने वाले जो बीज रूपात्माएं हैं उनमें भी असुरों के बीज हैं या नहीं है? हैं? हैं। उन असुरों के बीजों को भी ज्ञान सुनाता है या नहीं सुनाता है? हैं? सुनाता है। और जो देवताई कुल के हैं पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशी 24, उनको भी ज्ञान सुनाता है या नहीं सुनाता है? उनको भी सुनाता है। तो राइटियस के लिए भी उसका डमरू बाजा बजता है और लेफ्टिस्ट के लिए भी डमरू बाजा बजता है। जो राइटियस के लिए बजता है वो मुरली की तान है। क्या मुरली का महावाक्य जब आता है तो पक्का पक्का राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? पक्का राइटियस। लेकिन वो मुरली क्या जो पक्का महावाक्य है शब्द बाई शब्द, वो देवताओं को पहले समझ में आता है। वो मुरली के इशारे देवताओं को पहले समझ में आते हैं या राक्षसों को पहले समझ में आते हैं? देवताओं को पहले समझ में आ जाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं मुरली के महावाक्य। एक्यूरेट, जो राक्षसों को एक्यूरेट शब्द बाई शब्द मुरली के महावाक्य समझ में नहीं आते हैं, उनको फिर समझाना पड़ता है। देवताओं के लिए इशारा काफी होता है, मुरली का एक वाक्य सुना दिया वो कहेंगे हाँ 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 मेरी समझ में आ गया। जो आसुरी प्रकृति की आत्माएं हैं कहती हमें समझ में नहीं आया, तो उन्हें समझाना पड़ता है। तो जो समझानी समझानी पड़ती है वो समझानी ज्यादा लंबी हो जाएगी या शॉर्ट में रहेगी? हैं? ज्यादा लंबी हो जाती है, विस्तार वाली हो जाती है। तो जो विस्तार वाली वाणी है वो भी मंदिर में दिखाई जाती है। शिवशंकर भोलेनाथ के मंदिर में दो तरह का बाजा होता है, उसका नाम क्या है? नहीं, वो एक ही है, वो डमरू एक ही है। लेकिन मंदिर में एक और बाजा होता है बड़ा, नगाड़ा। वो नगाड़ा उसमें दो तरह का बाजा है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। क्या वो दोनों तरह का बाजा है ब्राह्मणों के लिए ही? जो मुरली के डायरेक्ट महावाक्यों को नहीं समझते हैं और कहते हम नहीं मानेंगे ये तुम्हारी अपनी बात है, तो फिर मुरली का महावाक्य सुनाना पड़ता है, ब्रह्म वाक्य सुनाना पड़ता है, जिसके लिए कहते हैं वेदवाणी। वो वेदवाणी का ब्रह्म महावाक्य है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम जिसके लिए कहा जाता है, वो वाक्य सुनाना पड़ता है। और वो एक वाक्य सुनते ही चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो चाहे निष्कृष्ट ब्राह्मण हो उनको बात माननी पड़ती है। वो है नगाड़े का बड़ा रूप जो बोलता है धूम। सुना है कभी नगाड़ा? यूपी में बहुत नगाड़ा बजाया जाता है। क्या यूपी में एक ड्रामाबाजी होती है, उस ड्रामाबाजी का विशेष नाम है नौटंकी। क्या नौटंकी? कैसी टंकी? समझ लो पानी की टंकी। क्या वो पानी से भरी हुई नौ तरह की टंकियां हैं? होते तो पुरुष हैं लेकिन कपड़े कैसे पहन लेते हैं? है स्त्रियों के कपड़े पहन लेते हैं। वो नौटंकी में नौ तरह की कन्याएं बनाई जाती है, अंदर से पुरुष हैं या स्त्री हैं? अंदर से पुरुष हैं रुद्रमाला के, और बाहर से देखने में क्या आते हैं? स्त्री देखने में आते हैं। वो नौटंकी ज्ञान जल से भरी हुई टंकियां हैं, बढ़िया बढ़िया गीत गाती हैं। उन नौ टंकियों के पीछे एक जोकर रहता है। क्या जैसे बाबा कहते हैं, मुरलीम बाबा ने सुना बाबा से, बाबा ने कहा सात शीतलाओं के साथ एक क्या होता है? अरे जब कन्याओं को भोजन खिलाते हैं नव दुर्गाओं में, तो सात शीतलाओं नौ कन्याओं के साथ एक कौन बैठता है? कुमार बैठता है कि नहीं? तो वो कुमार होता है दिखाया हुआ, वो जोकर के रूप में दिखाते हैं। क्या जो करे सो अच्छा, वो जो कुछ भी करता है ना, चाहे अच्छी बात करेगा चाहे बुरी बात करेगा साफ खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जैसे सिख लोग कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। सुना कि नहीं कभी? गुरुद्वारे में जाके सुनना। वो भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान जो बोलेगा वो निहाल कर देगा। तो ऐसे ही वो जोकर का भी पार्ट है। तो वो जोकर नौ टंकियों के बीच में एक जोकर होता है। ऐसा वहां ड्रामाबाजी होती है यूपी में खास। वो बात कहां की है? है? संगम युग की बातें हैं। किस बात पर मिसाल दिया गया है? नहीं नहीं, नगाड़े के ऊपर मिसाल दिया गया। वहां ऐसे तो सारंगी, ये तुम्हारा ढोलक, मजीरा, ये जल तरंग सब बजते हैं, लेकिन उसमें एक आवाज बहुत तीखी सुनाई पड़ती है, नगाड़े की। तो नगाड़े में जो छोटा नगाड़ा होता है वो करता कड़बड़ 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 दो। क्या बीच में जो किड़बिड़िया किरती है, क्रिकेट आती है ना, बड़ी तीखी आवाज में बोलती है। इतनी तीखी आवाज होती है कि बहुतों के कानों में कर्कश लगती है। फिर बीच में एक होता है धू, तो धू है बाबा की मुरली जो ब्रह्मा के मुख से निकली, और बाकी सब क्या है? क्या है? किड़बिड़िया। वो किसके लिए है? समझुओं के लिए है या ना समझुओं के लिए है? जो बेसमझ हैं, नहीं समझते हैं, बाबा की मुरली को एक बार कहने से या इशारे से उनके लिए वो केड़बड़िया है, लंबा लंबा सुनाती है। तो वो नगाड़ा बजाया जाता है शिव के मंदिरों में, लेकिन शिव के हाथ में कौन सा डमरू रहता है जो दोनों तरफ बजता है? और
याद नहीं ठहरती कहते मुरली, याद नहीं रहती।
वही तो आज वाणी में बताया कि बुद्धि अगर विकारों में फंस जाती है, बाल बच्चों के मोह में फंस जाती है, पति विकार में डालता है तो विकार में गिर जाती है, तो ऐसों की बुद्धि में ज्ञान ठहरता है? नहीं ठहरता। जब ज्ञान ही नहीं ठहरता तो मानो बाप की पहचान ही नहीं ठहरती, और बाप की पहचान नहीं ठहरती तो बुद्धि में याद भी नहीं ठहरती। यही कारण है। और
हाँ, 500-700 करोड़ आत्मा में एक आत्मा भी कम, एक आत्मा भी कम है तो विष्णु का मान्यता टाइटिंग नहीं मिल सकती। और फिर उस समय कोई छोटा 1 साल का या 6 महीने का बच्चा हो तो कैसा मालूम पड़ेगा बाबा भगवान बाप आया हुआ है?
कमाल है, लास्ट में 6 महीने का बच्चा कोई होगा, और आज की दुनिया में 3 और 2.5 साल के बच्चे कंप्यूटर पर बैठ करके सारी दुनिया चला रहे हैं। ऐसा अखबार में आता है कि नहीं आता है? तो और आगे चल के लास्ट में 6 महीने का बच्चा कमाल करके नहीं दिखाएगा? बोलो, है? कमाल करके दिखा सकता है। और
मुरली में बोला था कि 2015 में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो कौन सी पढ़ाई पूरी होगी?
रूहानी पढ़ाई पूरी होगी कि जिस्मानी पढ़ाई पूरी होगी? है,
रूहानी
पढ़ाई। तो पूछते क्यों है? हाँ, और
सच्ची गीता में एक पार्ट है, जब तक बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, जब तक एक्यूरेट
हाँ क्या नहीं बतावेंगे?
बाप का एक्यूरेट संबंध,
बाप से तुम्हारा एक्यूरेट क्या संबंध है? जब प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न का जवाब जो एक्यूरेट आएगा वो जवाब आत्मा एक्यूरेट जवाब देगी या देह अभिमानी एक्यूरेट जवाब देगा? जो आत्मा बन चुका होगा, बाप का पक्का बच्चा बन चुका होगा, परमात्मा का बच्चा आत्मा, वो आत्मा रूपी बच्चे की बुद्धि में 84 जन्मों की बात आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? आत्मा पार्टधारी है या नहीं है? तो वो पार्टधारी जिसकी बुद्धि में 84 जन्मों का पार्ट आ चुका हो और उन 84 जन्मों में पहले जन्म का पार्ट पक्का बैठ चुका हो, बैठा होगा या नहीं बैठा होगा है? बैठा होगा। तो ऐसी आत्मा जिसकी बुद्धि में 84 जन्मों का सामान्य पार्ट भी बैठ गया हो और 84 जन्मों में से जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है पहला जन्म, वो पार्ट भी बैठ गया हो पक्का पक्का, तो वो बच्चा बाप से अपना संबंध बता पाएगा या नहीं बता पाएगा है? क्या बताएगा, क्या संबंध बताएगा, मुख्य संबंध क्या बताएगा? बाप बता, बाप से वर्षा मिला है। अरे बाप है तो बाप किस बात का बाप है? है वर्षा देने वाला बाप है। क्या वर्षा देता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में सबसे बड़े ते बड़ी, सबसे महान ते महान मुक्ति का रूप क्या है? लक्ष्मी नारायण का पद, विश्व पिता का पद, विश्वपति का पद। इससे ऊंचा पद कोई भी होता ही नहीं। तो ये विश्व पिता या विश्वपति का संबंध वो आत्मा बताएगी कि मेरा बाप से क्या कनेक्शन है, क्या पक्का संबंध है। क्या बताएगा? मेरा मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूँ। हाँ जी,
माता जी का प्रश्न है। 108 राजा हैं, 108 राजा हैं, जब द्वापर में जाते हैं तो उनकी कलाएं तो घट जाती है, तो उनको पावरफुल कैसे कहा जाए?
उस समय जो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर होती हैं, उनके बीच में वो द्वापर में तो क्या, कलयुग के अंत में भी वो 108 में ज्यादा पावरफुल होती हैं, चाहे वो परमधाम से उतरी हुई द्वापर कलयुग की आत्माएं ही क्यों न हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, उनसे भी जास्ती पावरफुल आत्माएं होती हैं। इसलिए
गोलकोंडा किला
अरे गोलकोंडा किला के बारे में बताओ तो पहले। हाँ किला है, मान लिया किला है, कोई होगा, उसके बारे में खास बात क्या है? अरे पूरी कथा कहानी तो बताओ, सार में तो बताओ। ప్రశ్న తో హే లేకిన్ ప్రశ్న కే పీచే ఉస్కా క్లారిఫికేషన్ చాయే। क्लेरिफिकेशन क्या दे रहे हैं?
उस समय पर जो आत्माएं होती
हैं,
उस समय पर जो आत्माएं,
किस समय?
द्वापर में।
द्वापर में
आदि 120 मंदिर जन्म तीसुकुंटारु कदा बाबा, आदि 120 मंदिर जन्म।
अरे गोलकुंडा की बात बताओ। यहाँ अभी गोलकुंडा की बात पूरी होने दो। हाँ है,
वो राजमहल था बाबा,
राजमहल था गोलकुंडा।
गोलकुंडा राजमहल था। वो तानेशे का पार्ट भी चला। जब
वो तेलुगु में कुंडा माने क्या होता है? तालाब है, कुंडा माने गड़ा कोंडा कोंडा माने पहाड़ हाँ पहाड़ गोल जैसे तिरुपति में सात लंबे लंबे पहाड़ गए ऐसे लंबा पहाड़ नहीं गोल पहाड़ अच्छा हाँ गोल कुंडा है उसके बारे में
गोलकुंडा किला में अंदर में रामदास का बंदी खाना था
रामदास का बंदी खाना है ना
रामदास का बंदी खाना अच्छा
गोलकुंडा में था बाबा
हाँ
उसका अर्थ क्या है
रामदास राम का दास राम तो रामबली आत्मा हो ही गई और उनका बढ़िया था बढ़िया दास कौन रामायण के अनुसार बताओ हनुमान तो हनुमान जो है वो राम का पक्का पक्का दास है ना और हनुमान जब बचपन में थे तो बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों को वो जेल में बांध के डाल देते थे कि नहीं डाल देते थे हैं? डाल देते थे तो वो ही उनका गोल कुंडा हो गया क्या ऐसा पहाड़ ऐसी ऊंची स्टेज थी उनकी कि बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों को बांध के डाल देते थे जब उनकी बातों का जवाब नहीं मिलता था ये कहां की बातें हैं इन बातों का फाउंडेशन कहां पड़ता है हैं? संगम युग में पड़ता है अभी ब्रह्मा की आत्मा शिव 108 में प्रवेश करता है या ब्रह्मा की आत्मा बच्चों में प्रवेश करती है शिव सर्वव्यापी है एक व्यापी है या ब्रह्मा की आत्मा बच्चों में प्रवेश करती है हैं? ब्रह्मा की आत्मा बच्चों में प्रवेश बाप दादा प्रवेश करते राम कृष्ण की आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन शिव तो एक व्यापी है उनमें भी जो राम का दास कहा जाता है माना ब्रह्मा वाली आत्मा जो हनुमान का पार्टदारी है वो इतनी पावरफुल आत्मा है कि 108 जो रुद्रमाला के बच्चे हैं उनमें जो सप्त ऋषियों के बीज का पार्ट बजाने वाले हैं वो भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो उनको बांध बूंद के जेल में डाल देते हैं। हाँ उसकी यादगार में वो गोल कुंडा बना हुआ है और हाँ
भक्त कन्नप्पा ज्ञानी है क्या अज्ञानी है क्या
भक्त कन्नप्पा
भक्त कन्नप्पा हाँ हाँ कन्नप्पा ओहो कन्नप्पा की आंख फूटी थी कि नहीं फूटी थी है जब आंख फूटी है तो अज्ञानी है भगवान मिल गया तो आंख आ गई या फूटी रह गई है आ गई तो सोजरा हो गया ज्ञानी हो गया और
हाँ 5000 साल के ड्रामा में ब्रह्मा बाबा का आयु थोड़ा कम हुई है ना बाबा
है
ब्रह्मा बाबा की आयु
हाँ
कम हुई है ना
हाँ हाँ
कितनी वर्ष कम हुई है और कब
50 साल तो बताई मुरली में
कब से कब तक
69 में तो शरीर छोड़ा था शरीर रहते रहते आयु गिनी जाती है कि शरीर छोड़ने के बाद आयु गिनी जाती है अरे आयु कब गिनी जाती है तो कब तक उनकी आयु थी 69 के बाद उनकी आयु खत्म हो गई तो जब 69 के बाद आयु खत्म हुई तो उसमें 50 साल और जोड़ दो कौन सा वर्ष आया अरे
2009
है 2009 हाँ 2018 आया तो वही टाइम हुआ। ब्रह्मा वाली आत्मा को कोई भी ब्रह्मा कुमारी ये नहीं मानता कि वो साकार में पार्ट बजाए रहे, लेकिन अभी साकार में पार्ट बजाए रहे हैं या नहीं है? नहीं बजाए रहे, बजाए रहे, लेकिन ब्रह्मा कुमार नहीं मानते तो सारी दुनिया में भी कोई नहीं मानता कि कृष्ण की आत्मा अभी साकार में पार्ट बजाए रही। जब दोनों आत्माएं संपन्न बनेंगी, बाप भी और बच्चा भी, बाप अकेला जाने वाला है संपन्न होकर के या बच्चे के साथ जाएगा?
बच्चे के साथ।
तो माँ बाप, वो बाप और बेटा जब दोनों संपन्न बनते हैं, उनका टाइम क्या बताया मुरली में है? तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो वो 40-50 वर्ष पूरे होते हैं 18 और 28 में। ये 2 वर्ष हैं, 10 वर्ष का अंतर है। उन 10 वर्षों में बाप और बच्चा दोनों ही लक्ष्मी नारायण स्वरूप बन जाएंगे, तो साकार हो जाएंगे या गुप्त रहेंगे? साकार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे संसार के सामने। और हाँ एक मिनट है, कमाल है। परम धाम में बाप का घर है या नहीं? जो बाप का घर है वो बच्चों का घर है या नहीं है? बच्चों का घर है। जो बच्चों का घर है तो बच्चे बाप के घर में आराम पाएंगे या बाहर की दुनिया में रह करके आराम पाते हैं? बाप के घर में जाकर के आराम पाते हैं। जैसे सारे दिन मनुष्य काम करता है, सारे दिन काम करके थक जाता है, तो घर में जाकर के रात में क्या करता है? आराम करता है। रात में रिफ्रेश होता है या सवेरे को उठता है तो रिफ्रेश होता है? सवेरे को उठता है तो थकान दूर हो जाती है। ऐसे ही आत्मा ने जीवात्मा बनकर के 84 जन्म पार्ट बजाया, इंद्रियों के सुख भोगे, इंद्रियों के सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर हो गई या पावरफुल हो गई? कमजोर हो गई, थक गई, लथपथ हो गई। ऐसी थकी हुई आत्माएं जब तक बाप के घर में नहीं पहुंचे तब तक वो पूरी रिफ्रेश नहीं हो सकती। वो बाप का घर पावर हाउस है। क्या? पावर हाउस। तो पावर हाउस से बहाने के बाद ही आत्मा कंचन काया बनेगी या पहले बनेगी? बोलो ना, कौन किसने पूछा?
आने के बाद,
आने के बाद बनेगी। हाँ जी,
बेसिक फॉर्मल ये प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, शंकर में ब्रह्मा का प्रवेशता का प्रूफ क्या है? शंकर में ब्रह्मा बाबा का प्रवेश न होगा।
हाँ,
प्रूफ मांग रहे हैं बेसिक फॉर्मल।
हाँ, बेसिक वाले मांगते हैं। अच्छा, उनसे पहले ये प्रूफ मांगो कि ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया, इसका प्रूफ क्या है?
है
तो यहाँ भी एडवांस की मुरलियाँ हैं। एडवांस की मुरलियों के आधार पर जो एडवांस कोर्स है, वो एडवांस कोर्स कोई भी ब्रह्मा कुमार पूरा सुनते हैं तो उनकी बुद्धि क्या होती है? पलट जाती है। अरे पहले इनकी बात का जवाब, आपने बात पूछी तो उनके पास जवाब नहीं है। क्या उनके पास जवाब है? मुरलियां हैं, माने ब्रह्मा की मुख से निकली हुई वाणी है, लेकिन ऐसी वाणी तो आसाराम बापू की भी है, मुरारी बापू की भी है, हंसाजी महाराज की भी वाणी है, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए सब की वाणी है। वो वाणी होना वो प्रमाण है या परिवर्तन प्रमाण है? वाणी होना प्रूफ है भगवान के आने का या वाणी का कितना प्रभाव होता है ये प्रूफ है? प्रभाव के आधार पर प्रूफ माना जाएगा। वाणी चलाना ये तो सब आए सब गाय बजाए के चले गए, कोई प्रभाव दुनिया के ऊपर नहीं पड़ा, परिवर्तन बुद्धियों का नहीं हुआ, तो प्रूफ है परिवर्तन बुद्धि का। और वो बुद्धि का परिवर्तन जो प्रूफ है वो प्रूफ ये बताता है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पब्लिक की वाणी का जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो गुरु बनकर के बैठे हैं गद्दी नशीन, वो अपने जिज्ञासुओं की बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्लास में जवाब देने के लिए तैयार हैं? नहीं। वो उसी तरह तैयार नहीं है जैसे दुनियावी गुरु अपने जिज्ञासुओं के सामने गुरु तो बनकर के बैठते हैं, प्रवचन तो देते हैं, लेकिन जिज्ञासुओं का मुख बंद करके रखते हैं या खुला करके रखते हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन भगवान की जो वाणी है वो वाणी हरेक बच्चे की जवाब का सवाल का जवाब रूबरू देने वाली है। ये प्रूफ है कि भगवान आया हुआ है। कोई मनुष्य गुरु में इतनी ताकत नहीं है जो भरी सभा में अपने प्रत्येक बच्चे का जवाब दे सके, ये प्रूफ है। दूसरी बात यह है कि शिव ने शंकर में ही प्रवेश किया, इसका पक्का प्रूफ है कि शिव और शंकर का नाम साथ में जोड़ा जाता है। कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। कोई होता हो तो बताओ, कोई है? कोई नहीं है। ये एक पक्का प्रूफ है कि शिव ने शंकर में प्रवेश किया। शिव एक व्यापी है। ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात का जवाब नहीं देते हैं, भले चिल्लाते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं, लेकिन जब उनसे प्रश्न किया जाता है सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है वो तो बताओ, तो बताते हैं नहीं बताते। और एडवांस पार्टी में एक एक बच्चा भी इस बात का जवाब देता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है लेकिन एक व्यापी भी है, वो हम बताएंगे, बशर्ते 7 दिन तक बैठ करके पवित्र जीवन बिताते हुए हमारी बातों को सुना जाए, साप्ताहिक कोर्स लिया जाए, तो जरूर बुद्धि में बैठेगा कि शिव शंकर में ही क्यों प्रवेश करता है, किसी और में प्रवेश क्यों नहीं करता। जैसे और धर्म पिताएं हैं, ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं हैं या सब एक जैसे हैं? है? अरे वो धर्म पिताएं एक से एक ऊंचे और एक के बाद एक नीचे हैं या बराबर बराबर हैं? है? एक से एक ऊंचे हैं। तो ऊंचा धर्म पिता ऊंचे में ही प्रवेश करेगा या नीचे में प्रवेश करेगा? तो वो ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं ऊंचते ऊंचे नारायणों में ही प्रवेश करते हैं, और वे ऊंचते ऊंचे नारायण सप्तऋषि हैं, 7 पवित्र आत्माएं हैं जो 7 नारायण सतयुग में बनते हैं, वो 7 नारायण नंबरवार नारायण हैं, नंबरवार कम कलाओं वाले हैं। उन नंबर वार कम कलाओं वाली नारायणों में द्वापर युग से वो धर्म पिताएं नंबर वार प्रवेश करते हैं। तो बताओ वो धर्म पिताएं ऊंचे थे ऊंचे बाप, या उनसे भी ऊंचा कोई और बाप है? अरे वो धर्म पिताएं ही ऊंचे थे ऊंचे बाप हैं, या उनका भी कोई बाप है? वो कौन है? और वो मानते भी हैं कि हमारा भी कोई बाप है। किसको बताते हैं? है शिव बाप। जो शिव बाप ऐसे बाप में आता है जिस बाप को हर धर्म के मनुष्य मात्र बापों का बाप मानते हैं, एडम मानते हैं, आदम मानते हैं, आदिदेव मानते हैं, आदि देवता मानते हैं, आदिनाथ मानते हैं, वो कौन है? वो प्रजापति। तो सीधी बात है कि शिव बाप ऊंचे थे ऊंचा बाप है, तो ऊंचे थे ऊंचे में प्रवेश करेगा या नंबर वार नीचे बापों में प्रवेश करेगा? ऊंचे थे ऊंचे नारायण में प्रवेश करता है। और एक प्रूफ नहीं है, मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में सैकड़ों हजारों प्रूफ हैं, आकर के बैठ के समझो तो समझ में आएगा। जैसे बोला अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप। कौन सा सेंटर? अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। तो सर्व सेंटर्स का बीज रूप क्यों है, कैसे है, वो बात ब्रह्मा कुमार कुमारी समझाएं, नहीं तो हम बताएंगे। समझाएंगे हैं? कैसे है वो कहेंगे, अहमदाबाद का सेंटर ब्रह्मा बाबा ने स्थापन किया, इसलिए सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो अहमदाबाद का सेंटर माउंट आबू की प्रॉपर्टी से स्थापन किया, किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की धन संपत्ति के आधार पर स्थापन नहीं हुआ, वो सेंटर सर्व सेंटर्स का बीज रूप कैसे कह दिया? बीज रूप कहने का कारण क्या? फल रूप क्यों नहीं कहा? फूल रूप क्यों नहीं कहा? तना रूप क्यों नहीं कहा? टहनी रूप क्यों नहीं कहा? बीज रूप क्यों कहा? बीज रूप इसलिए कहा कि अहमदाबाद के उस सेंटर से सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, आदि देव और आदि देवी, एडम और ईव, आदम और हवा, वो आत्माएं वहां से निकलती, इसलिए सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। और बताओ ब्रह्मा कुमार कुमारी बताएं कि वो बीज रूप आत्माएं कौन है, कहां है? नहीं आप जानते हैं तो हमारे पास आओ, हम बताएं। ओम शांति।